एक दो सवाल है, वैसे कल भी बात होगी लेकिन आज इस सबक के साथ देते हैं। आप लोग लिखिए जो भी लिखना चाहें और ये मैं इनका जवाब दे देती हूँ। ये लिखते हैं कि बास लोग कहते हैं कि बैंक के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और इनमें अलग अलग शोबों में काम करना अलग है, लिहाजा बास में सूद का ताल्लुक नहीं होता, तो वाजे कर दीजिए। देखिए, एक हदीस अगर सामने रख लें और एक असूल उसके साथ अखज कर लें, इंशाल्लाह बात बिल्कुल खुल के सामने आएगी। हदीस आपको याद होगी, अभी सुनाई, के चार लोग आकिलुहु मोकिलुहु कातिबुहु व शाहिदुहु। ठीक है, सूद खाने वाला, खिलाने वाला, उसकी गवाही देने वाला और उसको लिखने वाला, इन चार के ऊपर खुल के बात हो गई। आप बैंक की बात करते हैं, अगर आप ओपन बात करें तो देखिए कि बैंक के बहुत सारे काम है ना, और भी काम है। आप कहते हैं कि ये मनी को ट्रांजेक्ट करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, दिस एंड दैट। अब ये ग्लास है, ये पानी का, मैं कोई फतवा नहीं दे रही, मैं सिर्फ आपको सोचने के दो मुख्तलिफ अंदाज बताती हूँ। इसके बाद बात उसको ही समझ आएगी जिसका जितना तकवा होगा। वो सबक पहले याद कर ले कि हुदल लिल मुत्तकीन, याद है तफसीर, हिदायत किसको मिलती है और तकवा क्या होता है, हिदायत की तलब। जिस दिल में तकवा होगा, तलब होगी, उसको बात समझ आएगी। मुख्तलिफ दर्जे होते हैं लोगों के, हर बंदे का टेम्परेचर बॉडी का तो ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, ईमान का टेम्परेचर एक नहीं होता। इसी तरह याद रखिए, जब आप इस किस्म के सवालात दीन वालों से भी पूछते हैं ना, तो आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जवाब देंगे। ठीक है, इससे ये ना सोचा करें कि वो मुनाफिक है या फलां है फलां, हर एक का एक टेम्परेचर होता है, हर एक का एक सोच होता है, नुक्ता नजर होता है, उसका सोसाइटी में इंटरेक्शन होता है। और हर सवाल के दो ही दर्जे होते हैं, एक कामिलीन का और एक इब्तदाई लोगों का। एक तकवा होता है, एक फतवा होता है। जो बंदा जिस लेवल पे खुद को पाएगा, वो उसको उसके ऊपर लेके चला जाएगा। एक शख्स है, एक सिंपल असूल इसमें बैंक का जो आपने पूछा है, समझ लीजिए, एक वो चीज़ है जिसकी वजह से उस बैंक को कुछ फायदा हो रहा है। इनडायरेक्ट तो कुछ सफाई भी अगर कर रहा है तो लोगों को फायदा ही हो रहा है ना, उस बैंक की अच्छी रेपुटेशन है। लेकिन उसके उस सफाई करने, वहां चाय है, कोई चपड़ासी है या कुछ भी है, ठीक है। अब एक खास हद तक एक कराहत के साथ कोई कहता है कि अगर कोई बंदा वहां ऐसा कोई काम कर रहा है जिसमें कोई उसका जाती इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, बस वो सफाई कर रहा है, वो किसी भी जगह कर रहा है, तो उसको रुख्सत दे दो। ठीक है, ये उनके एक फतवे की बात होगी। दूसरी तरफ एक बंदा जिसकी सारे पेपर वर्क, कंप्यूटर इंचार्ज, उनका लिखना पढ़ना उसके ऊपर बात करेगा, तो बैंक का सारा निज़ाम ही उस पर चलेगा ना। ज़रूरी नहीं कि जिस जॉब पे आप बैठे हैं उस जॉब पे आप बैठ के कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखें, लेकिन जिस चीज़ के आप सिस्टम का हिस्सा बन गए, कुछ हिस्सा पड़ेगा ना। मिसाल है कि आप ये देखिए कि ये पानी है, आप दूध के दो कतरे इसमें डालें, आप उसको अलग कर सकते हैं बाद में, और आप इसमें शराब के दो कतरे डाल दें तो अलग नहीं हो सकता ना। तो बस यही इसका जवाब है। तफत्तकुल्लाह मस्तता तुम, कम से कम कराहत के साथ अगर एक बंदा ऐसी जगह पे है और अपने लिए कोई बेटर ऑल्टरनेट ढूंढ ले, अल्लाह उसको देगा। सूरह तलाक में आता है, वह मैं यत्तकिल्लाह यजल्लहु मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मखरज निकालेगा। यानी अगर मैं, आप किसी को जानती हो, अगर कोई उनसे ये सवाल पूछता तो उन्होंने एक लफ्ज़ में इसको ख़त्म कर देना था कि मैं तो कम अज़ कम नहीं करूँगा जॉब। हर बंदा अपनी मजबूरी जानता है। फिर दूसरी बात यहाँ कहूँगी कि जिसको आप इस बैंक की जॉब से छुड़वा रहे हैं, पहले देखिए कि वो नमाज़ पढ़ता है कि नहीं। जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पे पक्का नहीं है अभी, उसको अल्लाह की कदर नहीं, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, 5 वक्त नमाज के लिए वो नहीं उठता, आप उसकी बैंक की जॉब क्यों छुड़ाते हैं? उसके लिए पहले अकीदे की बात करें, उसको नमाज की बात करें, ये बातें खुद ही समझ आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ये दूसरा सवाल है कि यंग स्टूडेंट्स अपनी तालीम शुरू करते ही बिग लोन के अंडर आ जाते हैं और जॉब करके इसको उतारते हैं, ये है विशेष सर्कल जिसी की बात मैंने की थी। आप कहेंगे अब क्या करें, कैसे करें, हम इस पर कल बात करेंगे बहुत सारी अगर आप चाहेंगे। देखिए कि ये कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह ने किसी भी बीमारी की दवा ना दी हो। ठीक है, इस वक्त हम आइडियल दौर में नहीं गुजर रहे, लेकिन अगर हम मुस्लिम इसके ऊपर कुछ प्लान्स नहीं बनाएंगे और हम मुस्लिम दिल से इसको मानते हुए भी इस पे काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना। और आप याद रखिए कि जिन सोसाइटीज़ की बातें हम करते हैं ना, वो पीयर प्रेशर से बहुत डरते हैं, टू मच डरते हैं। क्यों? क्यों वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते? हम जितने मुसलमान जिन मुल्कों में या जिस सिस्टम में रहते हैं, अगर हम सब कम अज़ कम इस बात पे मुत्तफिक हो जाए ना कि कि हमने ये काम नहीं करना, तो क्या बड़ी बात है कि वो आपके लिए इसके अल्टरनेट ना दें। सिर्फ फर्क यह है कि हम पहले से हारे होते हैं, और मैं नहीं मानती कि आप आज के दौर में लोन लिए बगैर पढ़ नहीं सकते। गलत है, इस पे प्रैक्टिकल मिसाल है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपका वक्त दूसरा लो। कल इस पे आप जितने मर्जी सवाल पूछे, अगर वक्त हुआ तो ज़रूर आपको इंशाल्लाह इसमें जवाब दूंगी। ऑनलाइन से एक दो सवाल है कि मेरा एक सवाल है कि आजकल जो इस्लामिक लोन निकले हैं फॉर बाइंग आवर हाउसेज इज़ फॉर हलाल और हराम। देखिए कि लफ्ज़ इस्लामिक लोन हलाल लोन लगा लेना ये बात को वाजे नहीं करता। आप उसकी डिटेल्स देख लें। असूल इस्लाम का आपको समझा दिया, ला दरर व ला दरार, ला तजलिमु व ला तुजलमुन। अगर कुछ लोगों ने मिल के ऐसे कोई लोन्स बनाए हैं किए हैं, अगर उसमें कोई इस्लाम की हद नहीं टूटती, बहुत अच्छी बात है। और याद रखिए कि यहाँ एक छोटी साइड की बात आपको बता दूं कि इस पूरे निज़ाम को बदलना है ना हमने, राइट, बदलना है ना, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? मुस्लिम ब्रेन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हमारे मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, वो इस दुनिया के आज के निज़ाम को रिप्लेस करना चाहते हैं और उनको करना ही नहीं आता, तो कैसे करेंगे? बात समझ रहे हैं आप लोग? कोई मस्जिद में है या मदरसे में 5 साल पढ़ता है, क्या वो इस दुनिया के इकोनॉमिक्स को कंट्रोल कर सकता है? उसको वो टर्म्स एंड नहीं आती? इसके लिए इस वक्त हम सब जिस दौर से गुजरे हैं ना, ये इंटरफेस है। इस वक्त हमारी यूथ को पढ़ना है, पर क्यों पढ़ना है कि हमने इस्लाम को आगे लेके आना है? पढ़े इकोनॉमिक्स, किस सोच से पढ़े कि और पैसे कमाएं और बिजनेस बनाएं? नहीं, पढ़े आपके बच्चे, आपकी जो भी बच्चियां जो पढ़ते हैं, इस सोच से कि हमने अपने इल्म को इस्तेमाल करके इस्लाम के निज़ाम को दुनिया को दिखाना है। कोई लॉयर बने, किस सोच के साथ बने कि मैंने वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इस पे अप्लाई होते हैं उनको पूरा करने के बाद मैंने इस्लामिक लॉज को सामने लेके आना है? ये तो इबादत है। लेकिन दुख की बात है, आप माने ना माने, आज भी मुसलमानों में से अक्सरियत जो अपने बच्चों को पढ़ाती है, वो ये थीम दे के नहीं पढ़ाती। वो सिर्फ करियर के लिए पढ़ाते हैं कि तुमने ये बनना है, फिर मजबूरियों के नाम पे बहुत कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है। आज एक नो लगा लेंगे ना, आप देखेंगे कि अगली चीज़ आपके लिए खुद ब खुद आसान होगी। आज आपने पढ़ने के लिए लोन लिया है, कल आपको उसको उतारने के बाद फिर जॉब करनी पड़ेगी, जॉब के लिए आपको गाड़ी चाहिए, फिर आप गाड़ी का एक लोन लेंगे, गाड़ी का लोन लेंगे तो उसके बाद आपको सेलफोन चाहिए, तो आप उस सेलफोन की किस्तें देने पे उसको लोन पे लेंगे। और आप देखेंगे कि मुझे तो उस वक्त हैरत हुई जब पता चला कि लोगों के घर में फर्नीचर तक लोन पे और किस्तों पे होता है, और छोटी छोटी चीज़ों की कपड़े तक किस्तों पे मिलते हैं। कैन यू बिलीव? इससे बड़ा फिर एक इंसान का और क्या, यानी ऐसा सर्कल हो सकता है जिसको शॉर्ट किया जाता है? फिर इसी तरह, कैन वी बाय वन हाउस फ्रॉम टेकिंग लोन? देखिए, ये कल का मौजू है हमारा इंशाल्लाह। मैं आपके सवाल सारे सेव करके कल इस पे थोड़ी सी बात कर दूंगी। दे बाय प्रॉपर्टी विद अस एज अ पार्टनर इस्लामिक बैंक्स एज वी कीप पेइंग देम और आवर ओन सर। देखिए, पहली बात है कि मैं आपको इस पे इंशाल्लाह कल, अगर आप चाहेंगे तो एक दो ऐसे एड्रेसेस दे देती हूँ कि जिन लोगों से आप इस बारे में पहुँच लें जो वेस्ट में रहते हुए इन सारी चीज़ों को डील करते हैं। मेरा तो काम सिर्फ आपको पढ़ाना है, कोई मेरी बात को आप में से कोई फतवा ना समझे, ना हलाल ना हराम। मेरी इस मौजूद पे वैसे ही बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं ज़्यादा अपनी तरफ से ना ही कोई बात करूँ। फैक्ट्स, कभी रिपोर्टें आपको पढ़ के सुना देते हैं, कभी हदीसें, कभी कुरान की आयतें, बाकी सारी चीज़ें अल्लाह से डरने वाले, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। किसी वाकई ऐसे दीनदार को आप ज़रूर लेके जिसकी अपनी ज़िंदगी को आप सिंपल देखें, ये भी बड़ी बात है। जब दीनदार खुद अपनी ज़िंदगी को, स्टाइल को मेंटेन करने के लिए सिस्टम का हिस्सा बने होते हैं, तो उनकी मजबूरी होती है कि वो लोगों का दर्द समझते हुए फिर उनको भी बीच का रास्ता दें, सिंपल लिविंग रखें। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाएगा। फिर अल्लाह से कहें कि अल्लाह ताला तू हमारे लिए इसमें आसानियाँ पैदा कर। अगर फैमिली के लोग सूद वाले घरों में रहते हैं, तो क्या हम उनके घर ना जाएं, बायकॉट कर दिया जाए? क्यों, उससे क्या होगा? आप बताएं, आप ऐसे लोगों को इस्लाम का मैसेज दें, वरना तो आप जहाज़ों में भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो भी सूद पे ही होते हैं। जिस चीज़ के लिए आप पे कर देते हैं ना, इस पे बड़ी कहानी है। आप मेरी पिछले सालों की तफसीर सुने, यहाँ तो इतना इशू नहीं मैंने ये देखा, वल्लाह आलम, मुझे कुछ ज़्यादा अभी मैं आपकी सोसाइटी को समझ नहीं सकी अल्लाह के हुक्म से, लेकिन यह है कि जहाँ मैंने इतने साल गुजारे हैं, मेरे पास वहाँ की बहुत सारी कहानी है। ये कहती है कि हम जिसके पास जॉब करते हैं उनका सारा बिजनेस बैंक के डिपेंडेंट है जी, लेकिन मेरे हस्बैंड एज अ जॉब काम करते हैं तो इससे क्या जी, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। यही तो मैं आपको समझाने लगी हूँ कि जिस चीज़ को आप पे कर देते हैं, जैसे अब जहाज़ की मैंने खुद मिसाल दी कि हम जिस जहाज़ में यहाँ से बैठ के सऊदी अरब जाते हैं, आपको क्या था वो जहाज़ लोन पे, जिन बसों गाड़ियों ट्रेनों पे बैठते हैं वो लोन पे हैं, तो जिस चीज़ का आपने पे कर दिया ना आप उसे एग्जेम्प्ट है, समझ आ गई। फिर तो पूरी आप चेन है, बाहर जाते हैं खाना खाते हैं फास्ट फूड से, वो फास्ट फूड का ओनर सारा बैंक के कर्जे में, जैसे अभी हमारी बहन ने कहा कि हमारे रिश्तेदारों के घर कर्जे पे हैं, ठीक है, तो आप उस घर से तो कुछ नहीं ले रहे ना, लेकिन ये एक ऐसा बड़ा दुख का मौजू है, ये कोई खुशी वाली बातें नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से खुद बचना है कि इनको भी बचाना है, उनको भी बचाना है इंशाल्लाह। हमने जिसको कर्जा देते हैं वो बिल्कुल वापस नहीं करते, हाथ काटने के मुतरादिफ हो जाता है। देखिए अभी आयतें पढ़ी हमने, फनासिरतु निलल मैसरा वन तसद्दक, अगर आपको अल्लाह ने, शुक्र करें कि किसी ने आपका कर्जा देना है और आप लेने वाले हैं, पूरे यकीन से कह सकती हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम नॉर्वे के लिए आ रहे थे, ये सबको बाहर थोड़ी थोड़ी बात खबर फैल गई, शुरू में तो नहीं था पता, लेकिन निकल गई बात कि ये जा रहे हैं और लंबे अरसे के लिए अमेरिका से जा रहे हैं। कैन यू बिलीव, वो आखिरी दिन थे जो हमारे वहाँ अमेरिका में, एक एक लास्ट 3-4 दिन, इतने लोग आए या फ़ोन किया या रबता किया, वो अच्छा हमने सुना आप जा रहे हैं, आपको पता मैंने आपका देना है, वल्लाही खुद भी याद नहीं था किस किस को देना है, खुद लोगों के अंदर गिल्ट मौजूद जो कभी सामने नहीं आते थे, वो खुद आके बता रहे हैं, और आखिरी दिनों में इतने लोग बिन मांगे हमें दे गए कि आपने, हमने देना था, हमने सोचा था दे देंगे, आपने कभी पूछा ही नहीं, मांगा नहीं, तो मैंने कहा हमारा अपना फ़ायदा हो रहा है तो हम क्यों मांगे भाई, रोज़ कौन इतना सदका कर सकता है, अगर कोई कर्ज मुझे दे के वापस नहीं देता तो मैं तो खुश हूँ कि चलो कोई नहीं, अल्लाह ना करे मुझे कोई बड़ी ज़रूरत पड़े कि मुझे वो चाहिए, तो दिल बड़ा रखें, अल्लाह माफ़ कर देगा, हो सकता है जो नहीं दे पा रहा उसकी भी कोई मजबूरी हो, ठीक है। पेंशन जो मिलती है इसका पैसा भी तो इंटरेस्ट से आ रहा होता है, वो कंपनी जो पेंशन देती है, मैंने आपको अर्ज कर दिया, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है जब किसी चीज़ को आप अपनी ज़ात पे उसको पे कर देते हैं, वरना तो वही बात हदीस आज साफ है कि एक वक्त आएगा कि कोई भी नहीं बच सकता और गुबार तो कुछ ना कुछ अंदर जाएगा। आपको पता है कि आज ये भी एक रिपोर्ट, आज तो नहीं मैंने आपको सुनाई, लेकिन हर पैदा होने वाला बच्चा मकरूज है, हर बच्चा जो पैदा होता है ना, आपको पता है कि उसके पैदा होने पे जो खर्चा होता है ना, डिलीवरी का, हॉस्पिटल्स का, मशीनों का, उसमें कर्ज शामिल है। तो फिर बस सब्र करके इस निज़ाम को बदलने के लिए अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसका तकवा, और कोशिश करें कि आने वाली नस्लें, आने वाले दौर में हम मुसलमान इसके अल्टरनेट दें। बाकी रहेगी, लोग कहते हैं कि ये हो नहीं सकता, तो बताइए 1000 साल तक मुस्लिम रूलरशिप थी, ये जो आज 1435 है हिजरा का, 1435 है आजकल, 1000 यानी आज से 450 साल पहले तक पूरी दुनिया में इस्लाम था और कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं था, कहीं कोई इस तरह की खराबियां नहीं थी, मुसलमानों ने करके दिखाया। ये तो हम डूबे उस वक्त जब हम दुनिया की मोहब्बत का शिकार हो गए। हिस्ट्री पढ़े फिर आपको पता चलेगा इकोनॉमिक क्या, मैंने इस पे एक पूरा लेक्चर दिया था, कहाँ से इस्लाम से लेकर जो भी उस वक्त के दौर, जो आजकल का हमारा है, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये दुनिया में इकोनॉमिक टेररिज्म आया। अगर आपको कहीं मिले तो आप सुन लें, मेरा नहीं सुने किसी का भी सुन लें, आपको इस पर इंग्लिश में भी बहुत कुछ मिल जाएगा। جزاك الله خير واحسن الجزاء.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون